अब अगली आयत जो आ रही है इससे पहले थोड़ी सी तमहीद है, आयत पढ़ के फिर बता देती हूँ। मा साब में मुसीबत निल्ला बिस्निल्ला, कोई मुसीबत कभी नहीं आती मगर अल्लाह ही के इज़्ज़त से आती है। मुसीबतें अल्लाह के हुक्म से आती हैं। और याद रखिए मुसीबतें तोहफा है, करना क्या है, इन मुसीबतों का ला मुहाला नतीजा क्या निकले। वमन युमिन बिल्लाहि यहदि कल्बह, जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता हो अल्लाह ताला उसके दिल को हिदायत बख्शता है। वल्लाहु बिकुल्लि शयइन अलीम, और अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है। अब जहन में रखिएगा ये जो आयतें चल रही हैं ना, ये किस दौर की आयतें हैं, जो मुसलमानों पर सख्त मसाइब का दौर था। मक्का से बरसों जुल्म सहने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ कर मदीना में आके आबाद हो गए, और मदीना में जो अंसार थे उनके ऊपर दोहरी बात आ गई कि उनको अपने साथ दूसरों को भी लेना पड़ा। और ऐसे लगता था कि मुसलमान होने का मतलब मुश्किलों में घिरना है, तकलीफों में घिरना है। तो अल्लाह ताला यहाँ तसल्लियाँ देते हैं, कोई बात नहीं, जब तुम पर कोई तकलीफ आए, ये मेरे और आपके लिए भी है, मुसीबतें आती रहती हैं ना, मुसीबत का रूट क्या होगा, स्वाद या बा, सौब स्वाद वोबा या बा, तीर का निशाने पे चलना। ये जो लफ्ज मुसीबत है ना, इसका मतलब क्या है कि तीर बिल्कुल सीधी जगह पे लगा है। आपने बड़ी बूढ़ियों से एक जुमला सुना होगा, किसी की आती मुझ पर आ गई, गलत कहती हैं। कभी किसी दूसरे के एक हिस्से की तकलीफ आप पे और मेरे पे नहीं आ सकती, और सेम मेरी आप पे नहीं जा सकती। जो मुसीबत आती है पहली बात है कि अल्लाह के हुक्म से आती है, चीखो शोर करो या सब्र के साथ इन्ना माशको बसी व हुस्नी इल्लल्लाह कहते रहो। और सूरत हदीद के आयत 22 और 23 में बिल्कुल यही बात हम पीछे डिटेल से पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो हालात का रोना ना रो, दुख जो आते हैं उनको बर्दाश्त करो, उसको अपने अंदर रखो, अल्लाह ताला के हुक्म को मानो, खुशी के साथ चलते जाओ। जब एक बंदा अल्लाह की तरफ से आई हुई मुसीबत को कबूल कर लेता है, देखिए मुसीबत से मुराद कोई क्लेमिटी भी नहीं है कि सैलाब आ गया, तूफान आ गया, जलजला आ गया, कोई मर गया खप गया। हर नेमत के साथ कुछ ना कुछ तकलीफ तो आती है। आप ये कोर्स कर रहे हैं तो क्या ये ऐसे ही हो गया, मुश्किल आती है ना, मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों को सुबह स्कूल भेजते हैं तो मुश्किल आती है ना, सब्र कीजिए, बर्दाश्त कीजिए। जो बंदा तकलीफ के वक्त में अल्लाह से राजी हो जाता है ना, उसका जिक्र है आगे कि वमन युमिन बिल्लाह यहदि कल्बा, यानी फेवरेट हिस्सा है कुरान का, जो अल्लाह पर ईमान ले आता है अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है। मुझे कभी भी ये बात समझ नहीं आती थी, अल्लाह पर ईमान और दिल को हिदायत देना, ये क्या सारी बातें हैं। और आगे ये कि अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है, लेकिन कुरान को पढ़ने के बाद ये समझ आई बात। और वो क्या कि मुसीबतों का हजूम भी हो ना आपकी ज़िंदगी में, यू आर सराउंडेड बाय ऑल क्लैमिटीज और एडवर्सिटीज, उन सारे हालात में आपकी अकल, आपकी मत, आपकी समझ को जो चीज़ कायम रखती है ना, वो यूमिन बिल्लाह। सख्त से सख्त हालात में मोमिन के कदम नहीं डगमगाते, वो कौन सी कुव्वत है जो इंसान को दुखों की दलदल से आसान तरीके पे उठा लाती है, यूमिन बिल्ला। और इसका ऑपोजिट है काफिर फाजिर, छोटी सी मुसीबत पे हिल जाता है, जिसके दिल में ईमान नहीं होता ना। नंबर एक, किसी भी आफत तकलीफ को वो इत्तफाक समझता है, बाय चांस इट हैपेंड, बाय चांस मैं बीमार हो गई, बाय चांस मेरे घर चोरी हो गई। दूसरा एक नुकसान क्या होता है मुसीबत के साथ काफिर के या अल्लाह पे ईमान कमजोर होने वाले के साथ, कि वो दुनिया की किसी ताकत को इस मुसीबत के लाने या रोकने पे कादिर समझता, जैसे कहते हैं ना मुश्किल कुशा गौसे पाक, यानी अल्लाह की वजह दूसरों पे ले आता कि आई भी इनकी वजह से और जानी भी इनकी वजह से। तीसरा एक नुकसान होता है मुसीबत के दिनों में इंसान के साथ, खतरा होता है, एहतमाल होता है तकलीफ के दिनों में, कि इंसान वहम परस्त हो जाता है, चूंकि चूंकि मैंने ये नहीं किया ना तो इसलिए ये हो गया, चूंकि मैंने फुला बाबा जी की कब्र पे अब जाके 5 रुपए का तेल चढ़ाना छोड़ दिया तो ये मुसीबत आ गई, चूंकि फुला मुझसे नाराज हो गए हैं तो आजकल मेरे ऊपर ये मुश्किलें आ रही हैं, चूके चूके। ये तीन चीजें हैं जो यूमिन बिल्ला की नफी करती हैं, ठीक है। याद रखिए, मुसीबत में इंसान का ईमान बहुत खतरे में होता है। सबसे पहली चीज जो मुसीबत आने पे, तकलीफ या एडवर्सिटी आने पे जाती है ना, वो आपका तकवा जाता है। मैंने तो इतनी नमाजें पढ़ी, अल्लाह ने किया ही नहीं। मैंने इतनी दुआएं मांगी, किया नहीं। मैं तो सदकों में क्या कुछ दे के आ गई, मैंने तो जेवर भी दे दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। ये मुसीबत है। आपको और मुझे क्या करना है? यूमिन बिल्ला। हाँ, ये मुसीबत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से आई है, मेरे रब ने भेजी। एक वीडियो थी मेरे पास छोटी सी, किसी ने भेजी हुई। ब्लाइंड है एक बच्चा, ऐसे ही है कोई 8-9 साल का, तो उससे इंटरव्यू ले रहे हैं। तो लोग उससे पूछ रहे हैं कि देखो, तुम नाबीना हो तो तुम दुआ मांगते हो अल्लाह से, या तुम क्या फील करते हो? तो उसने कहा, नो, मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मेरी आंखें ले ली हैं। तो जो वो शख्स उससे इंटरव्यू ले रहा है, वो कहता है, क्यों, तुम कैसे खुश हो? कहने लगा, इसलिए कि क़यामत के दिन मेरा अल्लाह के सामने उजर तो होगा ना, कि मैं अंधा था, मैं जमात के लिए नहीं जा सकता था, मैं अंधा था, मैं कुरान नहीं पढ़ सकता था। तो मैं इस पे बड़ा खुश हूं कि अल्लाह ने मुझे इस उजर के साथ दुनिया में रखा हुआ। ये अय्यूम बिल्ला, मुसीबतों में एक दफा खिल के तो कहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे अल्लाह का फैसला, मेरे अल्लाह ने मुझे नहीं देनी ये चीज, अल्लाह तेरा शुक्र है। एक वाक्य पीछे सुनाया था, सिर्फ दोहरा देती हूँ, कि एक शख्स जिसकी बिनाई नहीं थी, ब्लाइंड था या चली गई, नेक बहुत था, तो किसी ने आके उसको आर दिलाई कि इतने तुम नेक हो तो अल्लाह से मांग लो। लोग सोचते हैं ना, नेक लोग अल्लाह के साथ नाउजुबिल्ला शरीके कारी हो जाते हैं, मशवरों से काम करता है अल्लाह उनसे। कहा, दुआ मांग लो अल्लाह से, आंखें लो। तो उसने क्या कहा? कदर अल्लाह अहब्बा इलैया मिन बसरी। अल्लाह की तकदीर, अल्लाह का मेरे बारे में ये फैसला कि मैं नाबीना हूं, मुझे अपनी आंखों से ज्यादा प्यारा है, कि अल्लाह ने मेरे बारे में सोचा कि मैं अंधा हूं, तो मैं खुश हूं। ये है यूम बिल्ला। और वल्लाह ही ये सबसे मुश्किल पर्चा इम्तिहान का। हमारे मुंह से कुछ निकल ही जाता है, सी तो निकल ही जाती है, गिला तो निकल ही जाता है, शिकवा तो निकल जाता है, और फिर दूसरा शिर क्या आता है, किसी बाबे फादे फलान नफा नुकसान कदर वाले, उसको जाओ उधर जाओ, उसकी दरगाह में चादर चढ़ाओ। ये है मुसीबतों के वक्त में सबसे बड़ा इम्तिहान, कि बंदा शिर की तरफ चल पड़ता है, कम जर्फ होता है। थोड़ी देर मुसीबत बंदा सह लेता है, लेकिन उसके बाद घुटने टेक देता है, किसी न किसी आस्ताने पे चला ही जाता है, कोई ना कोई ऐसी हरकत कर ही लेता है। बाज लोग तो इतने बदबخت हैं, मुसीबत आने पे अल्लाह को गालियां देने लगते हैं, बाज तो खुदकुशी कर लेते हैं। लेकिन नहीं, वो मैं यूमिन बिल्लाही, जो अल्लाह पर ईमान लाएगा, यहदी कलबा। यहदी कलबा क्या है? मुश्किल हालात में मुझे कैसे रिएक्ट करना है, अल्लाह उसको गाइड करता है। रोग ही बना लिया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, नहीं मिला तो ना मिले, वक्त तो मिल गया ना। बच्चे होते तो क्या होता, वक्त ले जाते, ये वक्त कहीं और लगा दो। शादी नहीं हुई, शादी तो नहीं मिली तो ना सही, दिन रात तुम्हारा अपना, अपना जियो, अपना मरो, अपने हिसाब से स्केड्यूल करो। यूमिन बिल्ला, याद ही कलमा। वो कुर्बलाता नहीं रहता, रोता नहीं रहता, हाय बच्चे, हाय हाय हाय, पहले वैसे हाय हाय करता, फिर नेमत मिल जाए तो कहता है वक्त नहीं मिलता। देखिए, मुझे तो जिंदगी का यही खुलासा समझ आया है कि रब की रजा पे राजी रहे। रदी तो बिल्लाह रब्बन, इसका तकदीर के साथ भी ताल्लुक है। जो अल्लाह ने शरीयत दी, अब उसको हम चीखें चिल्लाएं बदल तो नहीं सकते, सूद हलाल तो नहीं करा सकते ना, शराब जायज तो नहीं हो सकती ना, पर्दा उतार के बिल्कुल अपने आप को बगैर कपड़ों के फिराना अलाउड तो नहीं हो सकता। तो मान गए ना, शरीयत को भी माने, जिस तरह शरीयत को मानते ना, इस तरह अल्लाह के फैसलों को माने। हाँ, मैंने ऐसे ही बनना था, मेरा यही कद काट था, मेरे नसीब में इतने ही बच्चे थे, मेरी यही शादी होनी थी, मैं यही थी, मैं गोरी नहीं बन सकती, मैं एशिया में पैदा हुई, मैं यही हूं, मैं ऐसी हूं। आप देखिए, जो बंदा अल्लाह के साथ राजी है, अल्लाह उससे राजी है। मुझे इस वक्त हदीस सामने नहीं है, लेकिन हफ्से से याद है कि जो दुनिया में अल्लाह के थोड़े पे राजी हो जाता है, अल्लाह ने थोड़ा भी दिया कहता अल्हम्दुलिल्लाह, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसके थोड़े थोड़े अमलों पर राजी होगा। और जो यहां कहते हैं ना, हलमी मजीद हलमी मजीद, तो अल्लाह वहां कहेगा, लाओ फरिश्तों, जरा इससे लंबे लंबे अमाल मांगो, तब जन्नत मिलेगी। तो बच गए, मिलती नेमत तो क्या होता, जरा देखे तो सही, जिनको नेमतें मिली हैं वो कितना खुश को इंजॉय कर रहे हैं, खाक को इंजॉय करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपके इस नेमत हो तो आप खुश हो, नेमत ना होकर आप ज्यादा खुश भी हो सकते हैं, शर्त एक है कि यूमिन बिल्ला। तो ये आयत बड़ी गहरी है, आपके दुखों का रुख मोड़ देती है, आपकी बीमारियों को एक नया सिनेरियो दिखा देती है। आप कहती हैं कोई बात नहीं, अल्लाह ने वक्त दिया। आप देखिए, हर चीज में खैर है ना। आप कहते हैं सारा दिन लेटने का मौका नहीं मिलता, सो नहीं सकते, तो आप बीमार हैं, आप सारा दिन लेटे, आपको कोई बॉदर नहीं करेगा, चले जैसा तैसा भी हो, आपको लाके ट्रे में नहीं तो प्लेट में खाना तो कोई दे ही देगा ना, तो उस शहर में ये खैर आपको मिल गई। पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, क्या करें, वो डिस्ट्रेक्शन है, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, सारा दिन गाड़ी में घूमते हैं। बीमार हो के घर बैठिए, पढ़िए, कमरा बंद करके लेटिए, आप अपने कंप्यूटर से कुछ सुनिए, देखिए, पढ़िए, नो प्रॉब्लम। तो हमेशा याद रखें, शर में से खैर ढूंढें, तारीख से तारीख हालात में भी अल्लाह के फजल से उम्मीद का चिराग रोशन रखें। बड़ी से बड़ी आफत आ जाए ना, तो आपकी हिम्मत ना टूटे, और कभी बातिल के आगे सर नहीं झुकाना। तकलीफ डालता भी अल्लाह, ये आखिरी एंगल है अब इसका, तो तकलीफ से निकालता भी अल्लाह। यूनुस को मछली के पेट में डाला भी अल्लाह ने था, और मछली के पेट से निकालने के असबाब भी अल्लाह ने बनाए। बिजाहर नमरूद ने आग जलाई थी इब्राहिम के लिए, थी वो अल्लाह के हुक्म से, और उस आग को बरदम व सलामन किया भी अल्लाह ने। अल्लाह 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 अल्लाह, जब आपकी जिंदगी में अल्लाह का नाम इस तरह घूम जाता है ना, तो फिर आपको इंशाल्लाह कोई खपा नहीं सकता। रब की डाली हुई आजमाइश बस अच्छी है। हदीस सुन लीजिए, बहुत ही प्यारी है, बहुत दफा सुनी हुई है, लेकिन इन आयतों के साथ आपको और अच्छी लगेगी। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। मोमिन का मामला भी अजीब है, अल्लाह इसके हक में जो फैसला भी करता है वो इसके लिए अच्छा ही होता है। मुसीबत पड़े तो सब्र करता है और वो इसके लिए अच्छा होता है। खुशहाली मुयसर आए तो शुक्र करता है और वो भी इसके लिए अच्छा होता है। और ये बात मोमिन के सिवा किसी को नसीब नहीं होती। ना खुशियों में बहुत अकड़ना है और ना गमों में बहुत दबना है, फिर आप देखेंगे कि आप जिंदगी को एंजॉय करें। एक शख्स उसके पास नेमत ही नहीं है और एक के पास है। सोचिए, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, ऐसी दुनियादारी की मिसाल सी समझ आती है ना बात, आखिरत की नेमतें और दूसरी जिनको हम फील नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, उसको तो हम समझते नहीं। बस आप देखिए कि आपके हैंड बैग है ना, आपके हैंड बैग में क्या है, कागज, पेंसिल, कोई कार्ड, 20-25 पाउंड है, इट्स फाइन। जरूरत की चीजें आपने रखी हुई है, इतनी की जरूरत पड़ सकती है आमतौर पर आपको। और अगर बिलफर्ज इस वक्त आपके किसी के पर्स में 10 तोले सोना हो, 2-4 डायमंड की रिंग्स हो, और इसी तरह आपका पासपोर्ट हो, कीमती डॉक्यूमेंट है, अब मुझे बताइए कि उस पर्स की तरफ आपका ध्यान बार बार जाएगा कि नहीं जाएगा? खुश कौन होगा इस हॉल में, इस क्लास में एंजॉय कौन ज्यादा कर रहा होगा, पहला कि दूसरा? दूसरे को तो गम ही लगा रहेगा ना। और अगर बिलफर्ज आपके सबके पर्स उठा के शुरू में बाहर ही रख दिए जाए, और ऐसी जगह होती है कि आप सिर्फ कागज कलम ले जा सकते हैं, मैंने इस ट्रिप में एक ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह सेशन अटेंड किया, सिर्फ कापी और कलम, ना फोन ना कुछ, पर सब उन्होंने बाहर लेके रख लिए कि वहां रखें, वापसी पे टैग दिखा के ले लें, इजाजत ही नहीं है सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी डोंट माइंड, कागज कलम लेके अंदर चले गए आप। अब अगर मेरे पर्स में हजारों हो और बाहर पड़ा है, पता नहीं मिलना नहीं, कोई और ले जाए, और सैकड़ों लोगों की चीजें पड़ी हैं, कैन यू टेक दिस? नो। तो बताइए, मैंने पढ़ना अंदर खाक था, मैंने तो दिमाग उधर ही लगाना था ना। अब जिसके पास कम है या थोड़ा है, वो इंजॉय दुनिया को ज्यादा कर रहा है, या जिसको हर वक्त हौका ही लगा हुआ है कि ये चोरी ना हो जाए, ये ले ना जाए, वो ना कर दे, वो ना कर दे, बस ये है जीने का उस। थोड़े में खुश रहेंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत का खतरा भी नहीं रहेगा। ये जो दुनिया है ना, ये माया जाल है। थोड़ी दुनिया होती है तो घर साफ लगता है, और वही दुनिया ज्यादा हो, यानी 2-4 जोड़े हैं आपके जरूरत के बहुत अच्छे हैं, और 10-15 आ जाए तो आपके कमरे में गंद पड़ा रहेगा, और वो गंद क्या होता है, कपड़े, ऐसी है कि नहीं? जरूरत से शायद दुनिया भी इंसान को खराब कर देती है, इसलिए थोड़े में खुश रहें। ये किसी ने सवाल भेजा कि मुसीबत को अपने गुनाहों का कफारा समझना भी वहम परस्ती है या नहीं? देखिए, मुसीबत को अपने गुनाहों का कफारा समझना वहम परस्ती नहीं है, ये अच्छी सोच है। आपके ऊपर कोई तकलीफ आई तो आप ये सोचें कि मेरा कोई गुनाह झड़ गया। दूसरी बात है कि मेरे गुनाह तो इससे बहुत ज्यादा थे कि मुझ पर मुसीबत आती, तो अल्लाह ये तो मैं सस्ती छूट गई। आप बाजार चाहते हैं, आप कोई चीज देखते हैं, आप कहते हैं ये 2000 की होगी, दुकानदार आपको कहता है ये 1200 की है, फटाफट लेके नहीं आ जाते, आप कहते हैं मुझे तो ये 2 की लगी थी, ये 12 की अच्छी होगी। इसी तरह मोमिन दुनिया में कोई तकलीफ उस पर आती है ना, तो कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे गुनाहों के हिसाब से तो मुझे कैंसर होना चाहिए था, तो ये तो मुझे सिर्फ बुखार ही हुआ है, अल्लाह तेरा शुक्र है, ये है योम बिल्लाह। तो जब ये यकीन होता है ना, तो फिर इंसान का दिल खुल जाता है। वल्लाहु बिकुल्ली शयइन अलीम, और अल्लाह सब जानता है। तुम क्या करो, वातीउल्लाह, तुम अल्लाह की इताअत करो, कब, दुख सुख खुशी गम हर हाल में। और इताअत के लफ्ज को देखिए, दिल की खुशी है, तौन से। वातीउर्रसूल, और रसूल की भी इताअत करो, कभी किसी तरह की जिंदगी में हालात हो, तुम्हारी जिंदगी से इताअत का दामन ना छुटे। फइन तवल्लैतुम, फिर अगर तुम मुंह फेर लो, किस चीज से, लिख लें, इताअत से। فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بے شک ہمارے رسول کے ذمہ تو پہنچانا تھا صاف صاف، حق کو صاف صاف پہنچانے کا ذمہ تھا اور وہ ادا کر چکے. یعنی پھر نبیوں کی پکڑ نہیں ہوگی، پھر تم سے پوچھا جائے گا. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ اس کے سوا اور کوئی ذات نہیں مگر وہی. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اوپر اللہ ہی کے چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے. یہ ہے خلاصہ. جب کوئی تکلیف آئی، مصیبت آئی، اچھے برے حالات آئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ قائم رہو. نہ خوشیوں میں بدکو اور نہ غموں میں ڈپریشن میں جاؤ. مصیبتوں کے ہجوم سے گھبرا کر اگر اطاعت سے منہ پھیرو گے تو اپنا نقصان ہے، اور اگر خوشیوں میں بھٹکو گے تو اپنا نقصان ہے. رسول بات پہنچا کر چلے گئے. یہ مان لو کہ لا الہ الا اللہ ہوا، سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں، کوئی دوسرا یہ اختیار رکھتا ہی نہیں ہے کہ تمہاری اچھی یا بری تقدیر بنائے. اچھا وقت آ سکتا ہے تو اللہ کے لانے سے آ سکتا ہے، برا وقت ٹل سکتا ہے تو اسی کے ٹالے سے ٹل سکتا ہے. ہاں، جو شخص سچے دل سے اللہ کو مانے، ایک مانے، پھر اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، فل یا توکل، توکل کا راستہ، بھروسے کا راستہ. دنیا میں مومن کی حیثیت سے اپنا فرض یقین کے ساتھ انجام دیتا چلا جائے کہ خیر بہرحال اسی راہ میں ہے جس کی طرف اللہ نے رہنمائی کی. خیر ہوئی، کامیابی ہوئی تو اللہ کی مدد سے ہوگی، کوئی طاقت روکنے والی نہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ دینا چاہ تو ساری دنیا میری مدد کرے، کوئی نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد آخری آیت ہے. آپ نوٹ کریے گا کہ پیچھے سورت مومنون کی آخری آیت میں کس چیز کا علاج تھا؟ نفاق کا. نفاق کا کیا علاج تھا؟ انفاق. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ایمان کا باب پڑھانے کے بعد، اللہ کے اوپر ایمان، توکل کے بعد کیا سبق دیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری بعض بیویوں اور اولادوں میں سے دشمن ہے تمہارے لیے. یہ جو من ہے نا، بعض، سم آف، تمہاری بعض بیویاں یا شوہر اور تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں. کون سی؟ لکھ لیں، وہ بیویاں اور وہ بچے جو اللہ کے راستے کے تقاضے پورے نہ کرنے دیں. ہجرت کا حکم ہو چکا تھا نا جب یہ صورتیں ہو رہی ہیں نازل، ہجرت کر بھی چکے ہیں کچھ لوگ. تو کچھ لوگوں نے ہجرت کرنا چاہیے تو ان کے بیوی بچوں نے روکا، آڑ آ گئے، نہیں ہم نہیں اس ملک سے جائیں گے، ہم یہ کنٹری نہیں چھوڑ سکتے، ہم یہ لائف سٹائل نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں گرمی لگتی ہے، ہمیں مکھیاں ستاتی ہیں، ہمیں بجلی نہیں ہے، ہمیں بہت ہی گھبراہٹ ہوتی ہے. اس طرح مکہ سے مدینہ آنے سے روک لیا. تو اب ان کے خطرے سے اگر وہ کفر کے ملک میں رہے اور کفر کے کلمہ پڑھتے رہے تو فرمایا یہ تمہارے دشمن ہیں، کرو کیا. اب سمپل سی بات تھی، دیکھیے گا ذرا اس آیت کو. جب آپ اتنی آیت پڑھتے ہیں نا تو غصے میں چلبلا جاتے ہیں. دیکھو اللہ نے دشمن کہا بیویوں کو، تو پہلی بات ہے کیا ازواج صرف بیویاں نہیں ہوتی، مرد بھی ہوتے ہیں. چلیں بیوی بھی ناراض، میاں بھی ناراض، اولادیں بھی ناراض ہو جائیں، اچھا جی ہم اپنے ماں باپ کے دشمن ہیں. تو سمپل سی بات کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم. تو آگے کیا کہا جاتا؟ سب کو مار دو، فقتلوہم، بیویاں شوہروں کو مار دیں، شوہر بیویوں کو مار دیں، بچوں کو تم مار دو. یا یہ ہے کہ شادی نہ کرو، یہ آنا چاہیے تھا نا اصولن، دشمن کو تو مارا ہی جاتا ہے نا. لیکن آپ دیکھیے کہ ڈکشنری میں معافی اور درگزر کے جو تین لفظ آتے ہیں نا، وہ تینوں اسے ایک آیت میں جمع ہو رہے ہیں. فاحذروہم، پہلی بات کیا ہے کہ ان کی دشمنیوں کو کیسے توڑو، کم کرو، ان سے ہوشیار رہو. حذر حذر، پیچھے آپ سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، بچاؤ کو کہتے ہیں. حضو خزرکم، بچاؤ، ویپنز کی صورت میں، یعنی ہوشیار رہو، عقل مند رہو. تمہیں ایک بیوی کا جورو کا غلام نہیں بننا کہ بیوی تمہیں جو بھی کہے مانتے جاؤ، اور تمہیں مرد کے پاؤں کی جوتی بھی نہیں بننا کہ وہ تمہارے کپڑے بھی ہلکے کرتے کرتے تمہیں اللہ کی عدوں سے باہر لے جائے تو کہتے رہو کوئی بات نہیں یہ مجازی خدا ہے، یہ بھی نہیں کرنا. بی وائز، عقل مند بنو. بیوی شوہر کی بات مانے لیکن عقل کے ساتھ، اور شوہر بیوی کی بات مانے سمجھ کے ساتھ. ہوش کرو، اچھا بچ کے رہو. نمبر دو، وَإِن تَعْفُو، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو. تعفو وہی جس سے عفو کا لفظ، اللہ تعالیٰ کا نام ہے الف، یعنی تم عفو درگزر سے کام لو. اور وَتَصْفَحُو، تَصْفَحُو میں درگزر ہے اور تعفو میں عفو ہے، یعنی اف کہتے ہیں، ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. اور درگزر کے یہ جو صف ہے نا، یہ پام کو کہتے ہیں، ہاتھ کی ہتھیلی، صفا. अंदर का हिस्सा, यानी जाने दो, हर बात ना पकड़ो, डोंट बी टू पिकी। और चौथा लफ्ज व तगफिरू, और बख्शिश ही कर दो, माफी कर दो, छुपा ही लो तो कोई बात नहीं। फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। यानी वो दुश्मनी कर रहे हैं तुमसे, तुम्हें अल्लाह के रास्तों से रोके, लेकिन तुमने बदतमीजी नहीं करनी, चर्ब जुबानी नहीं इख्तियार करनी, तुमने उनके साथ बुरा मामला नहीं करना। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, देखो तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तो एक आजमाइश है। वल्लाहु इंदहु अजरुन अज़ीम, और अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है। लफ्ज फितना दोहरा ले, किसको कहते हैं फितना? हो नेमत लेकिन उसका गलत इस्तेमाल उसको जहमत बना दे। ये ऐसी है कि जैसे बिजली की वायर नेमत है ना, स्विच लगाएंगे तो आप कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, आप क्लास ले सकते हैं। फितना कब बनेगा? जब आप रेड वायर है उसको ब्लैक में और ब्लैक को रेड में डाल दें तो एकदम ब्लास्ट होगा, आपका कंप्यूटर भी जल जाएगा। माल नेमत है, तभी तो उसके जरिए से जन्नत पाओगे ना इन्फाक करके। औलाद नेमत है, क्योंकि अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया वल बाकियातुस सालिहात। औलाद होगी तभी तो उसको अल्लाह के रास्तों में लगाओगे ना, लेकिन जब हम इनको मिस यूज करते हैं, मिस हैंडल करते हैं, तो ये फितना बन जाती है। अल्लाह के पास अजर बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोग ईमान के तकाजे पूरे क्यों नहीं कर पाते? उसके पीछे माल और औलाद है। ये रब्त इन आयतों का मजमून के साथ। अमूमन इंसान ईमान की मिठास को पाना चाहता है, अल्लाह के रास्ते के तकाजे पूरे करना चाहता है, लेकिन बीवी बच्चे ऐसे अगर बीच में आ गए कि जो अल्लाह से दूर है, तो वो बाज़ दफ़ा उसको भी अल्लाह से दूर करने वाले बन जाते हैं। इन्हीं को माल और औलाद को आंखों की ठंडक बनाते बनाते जन्नत की नेमतों से महरूम हो जाता है। नतीजा क्या होता है कि वो अपने आप को दूसरी तरफ ले जाता है। आप देखिए, जब ये आयतें नाजिल हुई थी तब तो ये सिचुएशन थी ही कि लोग दीन पे आ रहे थे तो घर वाले रोक रहे थे। ये आज 1400 साल बाद क्या हालात है? कुछ मिलते जुलते हालात नहीं। मैंने तो फिर हिस्ट्री रिवाइज की अल्हम्दुलिल्लाह इस सफर में, मुझे ऐसे लगता है बिल्कुल इस वक्त ये जो हमारा इरा चल रहा है ना 2000 कर ली, दोबारा हम उसी दौर से गुजर रहे हैं जिससे मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके साथी गुजरे थे। आज दीन फिर उतने ही अजनबी, आज फिर दीन प्ल्यूटेड है, पता ही नहीं। नमाजें पढ़ने वालों को नहीं पता क्यों पढ़ रहे हैं, तवाफ करने वालों को नहीं पता ये चक्कर क्या कहते हैं, सही करने वालों की जिंदगी में अल्लाह के दीन की सही नहीं है, कोशिश नहीं है। नतीजा क्या निकलता है कि एक इंसान जब अल्लाह की तरफ चलता है तो माशरा उसको कबूल ही नहीं करता। वही बात है कि अब असल तवाफ तो इधर आके आना, ये खाना का वक्त तवाफ क्या? आपको धक्के पड़ते जाएंगे, आप घूमते रहेंगे। असल तवाफ इस जिंदगी का तवाफ है, जब आपको सब, अगर एंटी जा रहे हैं तो आपको क्लॉकवाइज जाना है। यहां आके अगर आप अपने आप को अल्लाह के सामने रखते हैं तो फिर बात है। देखिए, ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। अल्लाह ने अगर उनको दुश्मन कहा है तो मुझे आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, और मिन कहकर बताया, सारे ऐसे नहीं है। मत जाके अपने बीवी को कह दो और शौहर को कह दो कि तुम तो मेरे लिए फितना हो, और बच्चों को कह दो फितना है। बच्चे कभी फितना नहीं होते, हमारी गलत तरबियत उनको फितना बनाती है। हमारी गलत तरजीहात, प्रायोरिटीज का गलत होना उनको फितना बनाता है। सवाल पैदा होता है कि होशियार रहो, फख्ज़रू, हम इससे क्या मुराद है? थोड़ा सा इसको खोल के देखते हैं, क्योंकि अहम आयत है। इनकी दुनिया बनाते बनाते अपनी आकबत बर्बाद ना करो, इनकी मोहब्बत को कभी अपने दिल में इस हद तक न बढ़ने दो कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ ताल्लुक और इस्लाम के साथ वफादारियों के रास्ते में रुकावट बन जाए। फिर तीसरी बात, इन पर कभी इतना एतमाद ना करो कि तुम्हारी बेख्तियाती से मुसलमानों की जमात के राज इनको मालूम हो जाए और वो दुश्मनों तक पहुंचे। ये वही बात है जो अल्लाह के नबी ने एक शख्स को कहा, मुसलमान को आपने खबरदार किया कि एक शख्स क़यामत के रोज लाया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके बाल बच्चे इसकी सारी नेकियां खा गए, जितनी नेकियां की थी, और की हुई थी ना नेकियां, तहज्जुदें, तरावियां, उम्रे, रोजे, मस्जिदों की खिदमत थी ना, लेकिन सब बच्चे खा गए। और आज वल्लाही इसकी प्रैक्टिकल तस्वीरें दिखती हैं। सिर्फ एक शख्सियत को देखें तो माशाल्लाह बारिश, नमाजी, 5 वक्त के, मस्जिदों से ताल्लुक, लेकिन उनके बच्चों को देखें तो कोई वेव लेंथ ही नहीं मिलती। यकीन नहीं आता ये हाजी साहब के बच्चे हैं, ये शेख साहब के बच्चे हैं। बाप हो सकता है पहली सफ के नमाजी हो और बच्चे घर में भी नमाज ना पढ़े। ये आज के दौर का तोहफा है, ये है फितना, इनसे बचते हुए। अफो दरगुजर से क्या मुराद है कि आप अगर ये बोरे हैं तो मारने पीटने ना लग जाओ, बीवियों पे हाथ ना उठाओ, बच्चों को ना मारो, ताल्लुकात में ऐसी बदमजगी ना पैदा करो कि घर जहन्नुम बन जाए। इससे इस्लाह के दरवाजे बंद हो जाते हैं और बदगुमानियां पैदा होती हैं और मुसलमान फिर बदनाम होते हैं कि औरतों को मारते हैं और ये बच्चों पे सख्ती करते हैं। अब देखिए कि जब नए नए लोग मुसलमान होते थे तो उस दौर में अमूमन बच्चे पहले मुसलमान होते थे, बड़े बाद में हुए। आज भी वही दौर है, जितने लोग इस्लाम पे आते हैं आप उसका रेशियो किसी भी जाके गूगल में चेक करें, उनकी एज क्या होती है, मोस्टली यंग होते हैं। कोई बूढ़ा अल्लाह उसको दीन पे ले आता है। बेस्ट टारगेट ऑडियंस जो है ना तबलीग के लिए वो यूथ है, अपनी भी और गैरों की भी। तो लिहाजा करो क्या, इन सारी बातों को सुनने के बाद फत्तकुल्ला, अल्लाह से डर जाओ, कितना मस्तता तुम, जितना तुम्हारी इस्तताअत है, जितना कर सको। वस्माओ, दूसरा काम सुनो। सुनते हैं तो दिल में हलचल मचती है ना, सुनेंगे नहीं तो ठंडे ठंडे घर बैठ जाएंगे। फिर अगला काम वा अतीयू, और इताअत करो। फिर अगला काम वन फिकू, और खर्च करो माल में से। क्या खैरन माल, यहाँ खैर का लफ्ज माल के लिए आए, लिख लें, खैर से मुराद यहाँ भलाई नहीं है। निवन फिकू खैरन, और अपना माल खर्च करो, लियन फुसिको, हम अपनी जान के लिए, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। या इसको दूसरे रंग में लेंगे, अगर खैर को भलाई तो खर्च करो, ये तुम्हारे ही हक में बेहतर है। वमन युक्शुख नफ्सिही फौलाएकहुमुल मुफ्लिहून, जो अपने दिल की तंगी से महफूज रह गए बस वही फलाह पाने वाले हैं। ये है मुझे और आपको पैगाम। सूरत आल इमरान 102 में कहा गया था, इत्तकुल्लाह हक्क तुकातिही, अल्लाह से उतना डरो जितना उसे डरने का हक है। तो सहाबा रो पड़े कि अल्लाह के नबी हम उतना तो नहीं डरते जितना अल्लाह से डरने का हक है। तो फिर सूरह बकरा की आयत 286 के, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी नफ्स को उसकी वुसअत से ज्यादा नहीं बोझ डालता। पता क्या चला, तुम जितना बच सकते हो, डर सकते हो, उतना कर लो, अल्लाह अपनी रहमत का मामला तुम्हारे साथ करेगा। बस इतने काम है का नहीं। इन तुक्रिदुल्लाह कर्दन हसनन, अगर तुम अल्लाह को कर्जे हसन दो तो युदाइफू लकुम, वो कई गुना बढ़ा देगा तुम्हारे लिए। पहला फायदा, अल्लाह के बैंक में जमा कराओगे तो कई गुना प्रॉफिट देगा। कहाँ देगा, सिर्फ आखरत में नहीं, दुनिया में भी देगा। दो दो हाथ से समेटोगे और वो हलाल की दुनिया होगी, कितनी बड़ी बात है। कहते हैं ना हराम बहुत ज्यादा होता है, दो दो हाथ से कमाते हैं, शराब बेचते हैं, बहुत आमदन है, सूद का काम है, बहुत है। अल्लाह कहते हैं नहीं, तुम मेरे बैंक में डाल दो, इंटरेस्ट फ्री है, तो मैं तुम्हारा दुनिया में कई गुना, कई मल्टीपल, दुनिया में 10% 20% सूद कोई देता है, मैं तो युदाइफू लकुम दुगना, यानी मल्टीपल 100, फिर 200%, 300% प्रॉफिट दूंगा। और इससे भी बड़ी बात, वयग़फिर लकुम, तुम्हारे गुना भी माफ कर दूंगा, जो कसूर गलतियां हुई थी और अभी भी हो रही है, माफ कर दूंगा। क्यों, इसलिए कि वो अल्लाहु शकूरुन हलीम, अल्लाह ताला बड़ा कदरदान और बुर्दबार है। ही इज टू मच टेकिंग केयर, अल्लाह बंदे की जो कदर करता है, सुभान अल्लाह। हम तो कभी कभी पर्स में से सबसे अगली नोट निकाल के डालते हैं ना अल्लाह के नाम पे, लेकिन अल्लाह कहता है छोड़ो, मैं सतीर हूं, बस मैंने इसकी कदर कर ली है। और हलीम बुर्दबार है, ये क्यों कहा गया, पीछे से साथ चल रही है बात। तुम भी अपने अंदर हिल्म लाओ, आलिमुल गैबी व शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम, गैब और हाजिर को जानने वाला जबरदस्त और दाना है। पूरी सूरत में से निकला के अंदर से एक लफ्ज में अगर आपसे कहा जाए, जी पीछे से आप, शुरू की नौ आयतों में 5 दफा अल्लाह के गैब को जानने और राजों को जानने की बात है। पूरी सूरत में यकीन करें लफ्ज अल्लाह है, ये है ईमान को बढ़ाने वाली दौलत। तो यहाँ इंशाल्लाह रुकते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। तिलावत सुनते हैं।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लहुल मुल्क व लहुल हमद, وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم